पृष्ठ संख्या 35। धूमिल की कविता में उपमा का शेष। जंगल प्रतीक को लें तो हम देखते हैं कि विभिन्न कविताओं में कवि ने जंगल को विभिन्न संदर्भों से जोड़ते हुए इसको बड़ी सार्थकता से प्रतीकित किया है। एक दो उदाहरण प्रस्तुत हैं। पृष्ठ संख्या 36। एक, मेरे चेहरे में वह आंखें लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। 20 साल बाद कविता से। पृष्ठ 9। दो, बस जरा सी गफलत होती है और जंगल आदमी की गिरफ्त से छूटकर दीवारों की कवायद में शरीक हो जाता है। इसके बाद पूरे परिवार की गलत फहमी का फ़ायदा उठाते हुए एक मकान उठता है। मकान कविता से। पृष्ठ 49। तीन, और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ जंगल मुखबिर है। नक्सलबाड़ी कविता से। पृष्ठ 68। चार, मैंने सुना वह आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है जैसे किसी जले हुए जंगल में पानी का एक ठंडा सोता बह रहा है। पट्टकथा कविता से। पृष्ठ 121 से। पाँच, और तब से आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी हैं। पट्टकथा कविता से। पृष्ठ 124। उक्त विभिन्न प्रतीक जंगल प्रयोगों में सामाजिक परिवेश की अर्थ छवियों अभिव्यंजित हुई हैं। सड़क और संसद के प्रतीक नक्सलवाड़ी मानसिकता में अपने अर्थ खो चुके हैं। इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी, नहीं अब वहाँ कोई नहीं है। मतलब कि इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। पृष्ठ 67 से। इन्वर्टेड कॉमा शुरू, भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है, संसद में और है, इसलिए बाहर आ, संसद के अंधेरे से निकलकर सड़क पर आ। पृष्ठ 96 से। पृष्ठ 37, छेनी सड़सी में ऐसी तनी है जैसे गुदार मांस में धसा हुआ दौ। सुदामा पांडे लोहा साय। पृष्ठ 74 से। पट्टकथा कविता में नेहरू जी का कोट के बटन होल में महकता हुआ एक फूल गुलाब का। पृष्ठ 102, चीन को बौद्ध मठ शास्त्री जी को जो चेहरा आत्महीनता की स्वीकृति में कंधे पर लुढ़क रहा था किसी झंझनाते हुए चाकू की तरह खुलकर खड़ा हो गया कहकर प्रतीकित किया है। इसी प्रकार 60 और 70 के दशक की भारतीय राजनैतिक आपाधापी की व्यंजना मत वर्षा एवं झंडों के रंग बदलने एवं गुटों को टकराने के द्वारा करा दी गई है। इन्वाइटेड का मसूरू, मत वर्षा के इस दादुर शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। पृष्ठ 118 से। मुझे लगा कि एक विशाल दलदल के किनारे बहुत बड़ा अधमरा पशु पड़ा हुआ है, उसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है जिससे लगातार भयानक बदबूदार मवाद बह रहा है। उसमें जाति और धर्म और समुदाय और पेशा और पूंजी के असंख्य कीड़े बिलबिला रहे हैं और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी एक भीषण षडांध को चुपचाप सह रही है। पृष्ठ 119 से। इस प्रकार धूमिल के प्रतीकों में परिस्थिति की भयावहता, अनिश्चय, शोषण, ऊब भरी विवशता को भली प्रकार देखा जा सकता है। शब्द चित्र या बिंब। नए कवियों में भाषा क्षमता की दृष्टि से धूमिल की कविता को मुक्तिबोध की तरह ही प्राणवान एवं सशक्त माना गया है। उनकी भाषा में जहां अनगढ़ शब्दों के प्रयोग का बहुत बड़ा हाथ है, वहीं शब्द चित्रों पृष्ठ संख्या 38 ध्यानात्मक प्रयोगों एवं बिंब योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या यों कहें कि उनके बिंब शब्द चित्रात्मक ही हैं तो गलत नहीं होगा। उनकी छोटी बड़ी सभी कविताओं में बिंबों का एक क्रम है। ये बिंब चित्रमयी तो हैं ही, अर्थ व्यंजना कराने में भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उनमें ना तो किसी प्रकार की असंबद्धता है और न पहेलियों जैसी दुरारूढ़ कल्पना। हाँ, उनकी सघनता शब्द चित्रात्मकता के कारण प्राणवंत हो उठी है। श्रव्य बिंबों में तो संगीत ध्वनियाँ ही मुखर हुई हैं। चाक्षुष बिंबों में आकृति रंग छवियों वाली रूपरेखात्मक हो गई हैं। यही नहीं, धूमिल द्वारा प्रयुक्त हर शब्द अपने अभीष्ट अर्थ को देते हुए एक मूर्त चित्र प्रस्तुतकर्ता सा जान पड़ता है। धूमिल की कविता में यहाँ कुछ बिंबात्मक प्रयोग दिए जा रहे हैं, जिनसे रचनाकार की बिंब सृजन की क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। जब वह सुदामा पांडे का प्रजातंत्र संग्रह में कविता के भ्रम पृष्ठ 22 शीर्षक कविता में यह कहते हैं, कविता के कान हमेशा चीख से सटे रहते हैं। नहीं, एक शब्द बनने से पहले मैं एक सूरत बनाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी दूर और आगे जाना चाहता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो उनकी शब्द में बिंब विधायनी आकांक्षा ही मुखर होती है। वहीं से एक दो शब्द चित्र देखिए, जिसमें चित्र के साथ परिवेश का वातावरण भी ध्वनित और साकार हो रहा है। सन्नाटा, नीम की पत्तियों में अंगुलियां फिराता है और बैल डकार कर पिछले खुर से आंखें सहलाता है। ताजा अखबार पृष्ठ 27, तारों भरा आसमान और मरियल खौरहा कुत्ता सिवान में पड़ी फसलों की लोथ का सन्नाटा सूंघता है, जहाँ तीन चार पेड़ आदमी होने का करिश्मा दिखा रहे हैं। मेरा गांव पृष्ठ 48। पृष्ठ 39, कमरे को कविता बनाना शब्द कौशल ही है। वह कमरा अब कविता बन गया है। दीवारें जैसे चार पंक्तियां हैं और छत उन्हें एक दूसरे से बांधती हुई एक वाजिब तुक है। कमरा कविता से पृष्ठ 75। संसद से सड़क तक संग्रह के कुछ शब्द चित्रात्मक बिंब यहाँ प्रस्तुत हैं, जिनसे कवि धूमिल की बिंब योजना संबंधी क्षमता को सही रूप में जाना जा सकता है। इन बिंबों में परिवेश परिस्थिति का भरपूर समाहित होने के कारण जो सघनता है, उनमें अर्थ संभावनाएं सम्यक रूप से निहित हैं। देखिए, नंबर 1, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। 20 साल बाद पृष्ठ 10। 2, पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओगे, जहां घास की नोक पर थरथराती हुई ओस की बूंद झड़ पड़ने के लिए तुम्हारी सहमति का इंतजार कर रही है। जनतंत्र के सूर्योदय में पृष्ठ 14 से। 3, रांपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए स्वर में वह हंसते हुए बोला, मोचीराम पृष्ठ 37 से। 4, शाम हो रही है, दिन की मुंडेर पर अंधकार में आधा झुका सूरज अपनी जांघों पर रोशनी की गुलेल तोड़ रहा है। रंगों की बदचलन इच्छाएं शहर का सबसे अच्छा शोकेस तैयार कर रही हैं। शहर में सूर्यास्त पृष्ठ 44। 5, काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ आ, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है। आ आ पृष्ठ 40। 6, और एक बूढ़ी औरत उस मकान की खिड़की पर बैठकर अपनी परछाई को हरियाली के किस्से सुनाती है। मकान पृष्ठ 49। 7, जहाँ पसीना पास से अधिक बदबू देता है, अपना हाथ खोकर चिमनी के नीचे खड़ा है निहत्था मंजूर, वहाँ आप मुझे मजबूर क्यों करते हो। कवि 1990 पृष्ठ 61। 8, मैं अपने बरामदे की निजी कुर्सी पर बैठा हूँ बेझिझक, सूरज मेरे जूते की नोक पर डूब रहा है। दूर कहीं बिगुल बज रहा है या फौजियों की वापसी का वक्त है, और शहर अपने जुनून को आहिस्ता आहिस्ता शीशे और रोशनी में बदल रहा है। शहर शाम पृष्ठ 75 से। 9, लौट आओ, इससे पहले कि तने हुए हाथों के ठूंठ पर रोशनी की चील बीट कर दे अस्मय का साहस, आने वाले दिनों को चिथड़ों और सड़े हुए दांतों से भर दें। हत्यारी संभावनाओं के नीचे पृष्ठ 80 से। 10, हर तरफ बूढ़े और रक्त लोलुप मशालची घूम रहे हैं, उन्होंने जलते हुए आदमी को झंडे की तरह उठा लिया है और उसे हमारे चेहरों पर गाड़ना चाहते हैं। उन्हें हमारी तलाश है। जमीन की जली हुई जिल्द पर खड़ा रोशनी सूंघने वाले जासूस कुत्तों का खतरनाक झुंड उनके इशारों का इंतजार कर रहा है। भाषा की रात, पृष्ठ 92, पृष्ठ 41, 11। और वो देखो, वह निहाल तुंधियल कैसा मगन है, हुचूर हुचूर हंस रहा है। भाड़े की भीड़ के अंधे जुनून पर उसे कतई ऐतराज नहीं है। भाषा की रात, पृष्ठ 75 से 12। मैंने कहा, आ जा दी, और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। वहाँ कतार के कतार अनाज के अंकुए फूट रहे थे। मैंने कहा, जैसे कसरत करते हुए बच्चे तारों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। पटकथा, पृष्ठ 99। 13। दुख और भय से एक झुरझुरी लेकर मैं उस पर झुक गया, किंतु बीच ही में रुक गया। उसका हाथ ऊपर उठा था, खून और आंसू से तर चेहरा मुस्कुराया था। उसकी आंखों का हरापन उसकी आवाज़ में उतर आया था, दुखी मत हो, यही मेरी नियति है, मैं हिंदुस्तान हूँ। अब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, इसी तरह तोड़ा है, मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। पट्टकथा, पृष्ठ 121 से। कहीं कहीं शब्द चित्रों में ध्वन्यात्मकता भी बड़ी मार्मिक बन पड़ी है। उदाहरण के लिए, बुझे हुए मकानों के सामने दमकलों के घंटों का चुप होना, पृष्ठ 28 से। में शब्दों से स्थिति की गूंज स्वतः हो रही है। इसी प्रकार शब्दों की योजना जब उसकी पूरी आकृति को सामने प्रस्तुत कर देती है, तब भी शब्द रूपात्मकता पूरे परिवेश की विसंगति को उजागर करने में समर्थ दिखाई देती है। देखिए, उसकी नाक ऊंची है और बरौनियाँ रूठी हुई हैं। उसकी गर्दन लंबी है, उसे शक है, किसी ने रास्ते भर उसका पीछा किया है। उम्र के 27 साल उसने भागते हुए जिए हैं। पृष्ठ 42। उसके पेशाब पर चींटियाँ रेंगती हैं, उसके प्रेम पत्रों की आंच में उसकी प्रेमिकाएं रोटियां सेकती हैं। अपनी अधूरी इच्छाओं में झुलसता हुआ वह एक संभावित नरक है। एक आदमी, पृष्ठ 54 से। उलटवासी शैली का उपयोग। वास्तव में रचनाकार जिस भाव विचार या संवेग को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके प्रति कभी कभी वह न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि भाषा का ऋज कथन या शब्द की अविधा शक्ति उसके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में लेखक उलटभाषी शैली को अपनाकर अपने सघन और सूक्ष्म वैचारिकता को कथन की विरोधात्मकता अथवा प्रतीक क्रियाओं की विरोधी प्रकृति या विरोधाभास को लेकर अभिव्यक्ति में उसे निरूपित करके अपने कथ्य के प्रति न्याय करने का प्रयास करता है। इस प्रकार विरोधाभास और कथानक असंबद्धता पर आधारित अभिव्यक्ति का कवि धूमिल ने भी यथास्थान उपयोग किया है। एक उदाहरण देखिए। देश प्रेम की भट्ठी जलाकर मैं अपनी ठंडी मांसपेशियों को विदेशी मुद्रा में ढाल रहा हूँ। फूट पड़ने के पहले अणुबम के मसौदे को बहसों की प्याली में उबाल रहा हूँ। जरा मैं पेशा औरतों की सावधानी और संकटकालीन क्रूरता मेरी रक्षा कर रही है। गर्व गदगद औरतों में आजवाइन का सत और मिस्सी बाँट रहा हूँ। युवकों को आत्महत्या के लिए रोजगार दफ्तर भेजकर पंचवर्षीय योजनाओं की सख्त चट्टान को कागज से काट रहा हूँ। शांति पाठ, पृष्ठ 24।